भरत का प्रेम है, भातृ प्रेम। यह कैसा है? एक महान सागर के समान है। यहां पर भरत की जीत मैं समझता हूं, भरत की जीत है, क्योंकि मर्यादा रूपी जो पहाड़ है वो प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाएगा। मर्यादा वहां पर कुछ, जहां पर प्रेम होता है वहां पर मर्यादा भी नहीं रहती, भंग हो जाती है। तो भरत की प्रेम, भरत का जो प्रेम है मर्यादा इसमें टूट सकता है। किंतु हाँ एक बात है, भरत जी की जीत हुई। अब ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, राम को अयोध्या ले सकते हैं या उनको वनवास के लिए कर सकते हैं। किंतु एक बात है, प्रेम की भी अपनी एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा क्या? अन्नाभिलाषिता शून्यम, अपना सुख मत देखे और दुख मत देखे। आराध्य देव जो उसके हैं उसके प्रति यदि प्रेम होगा तो सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर देगा और उनके अनुकूल रुचि के प्रति के लिए सब कुछ करेगा। इसलिए भरत का कर्तव्य होता है जितने पर भी, भरत जी अब ये देखें जे राम क्या चाहते हैं, उसके इच्छा अनुसार ये काम करें। भरत जी का मोह टूट गया। अभी तक मैं अपना स्वार्थ देख रहा था, मैं सोच रहा था जगत के लोग क्या कहेंगे, इसलिए रामचंद्र जी को लाना उचित है। मैं उनका छोटा भैया हूं इसलिए मुझको बड़ा दुख हो रहा था जे रामचंद्र जी जा रहे हैं। किंतु मैंने ये विचार नहीं किया राम को इसमें सुख है या दुख है। राम ने कहा, राम से इन्होंने कहा, भैया आप विचार कीजिए मुझे क्या करना चाहिए। राम ने कहा जे तुम्हारी विजय हुई, तुम जो चाहो अब कहो, मैं वही करूंगा। उन्होंने कहा जी भैया अभी तक मैं समझता नहीं था, जो प्रति किसको कहते हैं अब मैंने समझा, जनक जी की कृपा से वो हमारे गुरु हैं। अब मुझको ये देखना है जिसके प्रति प्रीति होती है उसकी क्या इच्छा है, उसके अनुसार में हमको चलना चाहिए सेवक को। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए मेरी उसको समझ में नहीं आता। रामचंद्र जी कहने जी देखो भैया तुम्हारी जीत तो हुई और मैंने राज्य ले लिया, मैंने राज्य छोड़ दिया था सदा के लिए, तो मैंने तुमने जो राज्य दिया मैं तुम्हारे कहने से राज्य ले लेता हूँ। किंतु एक बात है, 14 वर्ष तक तुम हमारे प्रतिनिधि होकर के यहाँ पर रह करके हमारी सेवा करो, हमारे आदेश को मान करके। और मैं 14 वर्ष तक पिताजी का आदेश पालन करके राज्य लेते हुए भी राज्य अलग रह करके देवताओं का कार्य है, जगत का कार्य है, उसको कर करके मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा। मैंने कहा जी अच्छी बात है। रामचंद्र जी के आदेश से उनके खड़ाओं को लिया प्रतिनिधि के रूप में, सिर पर रख लिया उनके आदेश को, और लेकर के रामचंद्र जी का आदेश लेकर के रानियों के सहित में लेकर के वो लौटे। रामचंद्र जी वहां से वहां कहा आप नहीं रहेंगे, चले गए कहां अब दंडकारण्य, इधर में लौटे। लौटे तो गांव में नहीं गए, अयोध्यापुरी में नहीं लौटे, नंदीग्राम वहां से 5-7 मील है, एक वन जैसा है जंगल और छोटा सा पहाड़ है, वहीं पर पहुंचे। वहीं पर राम जैसे रह रहे हैं वैसे ये रहने लगे, चटाई बिछा करके जैसे राम खाते हैं वैसे ही रहने लगे। उनकी मैया आई, बेटा आप जंगल वहां पर राजभवन जंगल जैसा मालूम है, बिच्छू काटते हैं, हमको यहीं पर रख लो। नहीं नहीं तुम प्रायश्चित तो करो जब तक जीवित रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैया का और हमारा संबंध नहीं तुम्हारा, अब राजमहल में तुम रहो महारानी के रूप में, मैं तुम्हें नहीं रख सकता यहाँ। लौट करके चली गई, पागल होकर के वहां पर चली गई। उन्होंने मैया नहीं कहा कभी भी, एक बार भी मैया नहीं किया। इसलिए राम का जो विरोधी है भरत जी ने उसको क्षमा नहीं किया। इसके बाद में दंडकारण्य में पहुंचे, वहां सीता जी की चोरी हुई, सूर्पनखा का नाक काटा गया। इसके बाद में मृगया बन करके वो आया मरीच, रामचंद्र जी के यहाँ से रामचंद्र जी को भगा ले गया। और इसके बाद में रावण आकर के सीता जी को चोरी की, जटायु को मारा, किस प्रकार से वहाँ ले गया, किस प्रकार से युद्ध हुआ, अब इसका पीछे हम वर्णन करेंगे। आज यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब रामचंद्र जी का जन्म का कृष्ण का जन्म का ये समय आ रहा है। अभी संक्षेप में तुम रामचंद्र कृष्ण का भी जन्म अभी आविर्भाव करा दो। आविर्भाव हुआ एक ही समय में, मथुरा में उनका प्रादुर्भाव और गोकुल में उनका जन्म हुआ। यहां पर वासुदेव कृष्ण का आविर्भाव हुआ और गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसलिए जाता ह्लादो महात्मना। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। परीक्षित को खुश करने के लिए मथुरा संबंधी कृष्ण का वर्णन किए और जब भाव में डूब गए, अपने आप हृदय का उनका जो भाव था वो प्रकट हो गया, तब उन्होंने नंद जी का पुत्र, यशोदा जी का पुत्र इत्यादि सब अपने आप वो कह दिए। कृष्ण को पाने के लिए सबसे पहले हृदय को पवित्र करने की जरूरत है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, पूत नहीं होगा, अपूत रहेगा, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पवित्र होना पड़ेगा। पवित्रता किसको कहते हैं? इसलिए पूतना सबसे पहले उनके पास में आई और भगवान ने उसे धात्री उचित गति दी, केवल एक वेश के नाते। उसने मैया का वेश बनाया, ब्रजवासियों का, और उसमें भी मैया का वेश बनाया। बस कृष्ण ने उसे देखा, ओ मैया का किसी प्रकार से कपटता से भी हमारे पास में आई है, इसलिए धात्री उचित गति दी। मातृ गति उचित नहीं दी, धात्री गति उचित। और मैं समझता हूं कि उसको ब्रज में देकर के गोलोक में उसको दिया, ब्रज में नहीं गोलोक में उसकी गति दी। ब्रज से गोलोक का कुछ पार्थक्य है, एक होने पर भी रसगत वैचित्र है। इसके बाद में तृणावर्त आया, सप्तासुर। सप्तासुर से कहते हैं जैसे गाड़ी है, गाड़ी में कोई चीज लाद कर ले जाते हैं रखकर, समस्त शास्त्रों का भंडार और ज्ञान उस पर लाद लिया, किंतु स्वयं वह एकनिष्ठ रूप में, अनन्य रूप में कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो वह सप्तासुर का रूप है। समझो इस चीज को। जो लोग समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेद वेदांत उपनिषद सबका, भागवत का भी, किंतु कपटता है। उसने देखा जी पुतना ने शरीर धारण करके कृष्ण को मारने आई किंतु मार नहीं सकी, अब मैं ऐसा करूं कि किसी गाड़ी में आविष्ट हो जाऊंगा, किसी वस्तु में जो कृष्ण देख नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा, और हम उसे मार डालेंगे, पीस देंगे। इसलिए सकटासुर किसको कहते हैं? जैसे वो गाड़ी में आविष्ट हुआ, ऐसे ही समस्त शास्त्रों का उनको ज्ञान है, सभा ज्ञान, सभा में ज्ञान देने वाले। कैसा ज्ञान? एक पंडित भागवत बांच रहे थे, उनकी पत्नी भी, पत्नी को मना किया जी मत आना इस सभा में, किंतु बेचारी जैसे तैसे वो आकर के छिप करके बैठी गई, भागवत की कथा हो रही है। उसने कहा जब अम्बरीश महाराज की कथा आई तो उन्होंने कहा एकादशी का जरूर पालन करना चाहिए और निर्जला रहना चाहिए। पत्नी के हृदय में यह बात आ गई और अम्बरीश महाराज जी का महत्व उसने समझा। ये वर देने में और अभिसंपाद देने में जो माहिर हैं, सिद्ध हैं, ऐसे ब्रह्म योगी जिसको जो जिला दें मार दें, जिनकी गति बहुत दूर तक है, भूर भुआ महाजन सब तप और नीचे में तल तलातल पाताल रसातल तक, ऐसे ऋषि उन्होंने कृत्या छोड़ी, जहां के तहां ये खड़े रहे। अम्बरीश महाराज अपने पैरों पर एक वर्ष तक प्रतीक्षा किया और जहां वो सुदर्शन चक्र इसको मार करके कृत्या को, और जब उसका पीछा किया तो ये भगे। देखो जब भगवान के ऊपर कितनी किसका विश्वास है। कृष्ण हमको रक्षा करते हैं, शरणागति का यह पहला अध्याय, कृष्ण हमें रक्षा करते हैं और मैं रक्षक के रूप में उनका वर्णन करता हूं। यदि शरणागति हुई और फिर दूसरों से ये कहते हैं अरे बचाओ, या कोई दुख दर्द के लिए दूसरों के पास में जाते हैं तो वो शरणागति कैसी? तो कृष्ण पर तुम्हारा क्या भरोसा हुआ? इतने पंडित हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, किंतु भगवान का चरणाश्रय नहीं है। इसलिए पतंति अधः अनादृत जुष्मदांग्रयः। बड़े बड़े योगी लोग जो अपने को वो ज्ञान मान, अपने को ज्ञानी समझते हैं, और कहां ऊपर से गिर पड़ते हैं भगवान के चरणों का अनादर करने के। अब सो जहां मुक्ता मुक्ति अभिमानी, अब मुझको मुक्ति मिल गई मिल गई, और वहां से ठीक उल्टे गिर पड़ते हैं। इनका ब्रह्म से संबंध नहीं था, ब्रह्म से संबंध किंतु परब्रह्म जो कृष्ण है, भगवान है, ऐसा विश्वास। अवधर में अम्बरीश महाराज अपने सारी इंद्रियों को, सारे अंगों को, मन को, जो कुछ था उनका सब कुछ लगा दिया भगवान की सेवा। इसलिए वो तो खड़े रहे, मृत्यु का भय नहीं किया, और ये डर के मारे भगे और अंत में इनके चरणों में आकर के गिरे। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर के एकादशी की पत्नी घर में चली गई और कुछ नहीं बनाया। आज कथावाचक वहां से चले, घर में आए, अरे खाने के लिए ले आओ, भोजन ले आओ, आज तो एकादशी है, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। बनाया, बनाया क्यों नहीं बनाया? अरे अपने लिए थोड़े कहा, उन लोगों के लिए कहा, दूसरे लोगों के लिए जो कुछ समझते नहीं है। जल्दी से आलू का दम और घी की पूरी और मिठाई इत्यादि जल्दी से लिया। कहा जी ये मेरे तो द्वारा संभव नहीं, तो लठिया उठाई। तो ये सब क्या है? शास्त्रों का भार है। कृष्ण की एकांतिक भक्ति होनी चाहिए, भागवत का ये प्रतिपाद्य विषय है, जिसमें उद्धव जी जैसे लोग कहते हैं गोपियों के लिए, आशाम हो चरण रेणु शाम सबई पुनसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अह तुक प्रतिहता जयात्मा संपुष्य। सबई पुनसांग, वही मैंने निश्चय अर्थे, परम पुरुष जो कृष्ण हैं, अधोक्षज हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, उनकी भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम धर्म है। धर्म पूज्यते कई तो वो अत्र परमो निर्मा शरणांग, इसमें भी वैसा ही आया। भागवत को पाठ करते हैं और चंडी जी का कंकाली की, उनकी गृह देवती देवी है, वो जितनी दुर्गा काली इत्यादि शंकर गणेश, भागवत में कहां लिखा गणेश जी की पूजा आरंभ करके तब भागवत पढ़ो? अरे कृष्ण तो स्वयं मंगलवाचक हैं, उसके लिए ये सब की मंगलाचरण करने की उसकी जरूरत है, गजानन इत्यादि की। इसलिए आरंभ ही किया जन्मादर्श जता अन्वयादि इत्यादि, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। इसलिए जो शास्त्रों का भार वहन करते हैं, भागवत को भी गीता और बड़े सूर से पाठ करेंगे, किंतु कृष्ण का भजन नहीं करके दूसरे देवताओं का भजन करते हैं। यदि कृष्ण का भी भजन करते हैं कपटता के साथ में, अर्थ के लाभ के, ये सब जितने हैं ये शकटासुर हैं, इनकी कपटता को दूर करते हैं भगवान। इसी तरह से तृणावर्त, दूसरों के आंख में धूल डालना, ये तृणावर्त माने आंधी, बड़ी जोर से आंधी आई, यशोदा जी कृष्ण को गोदी में लिए हुए हैं, स्तनपान करा रही, उसने अलक्षित रूप में बंदर का रूप धारण किया, हवा में प्रविष्ट हो गया, बड़ी जोर से आंधी आई, धूल कंकड़ सब कुछ उड़ने लगे, सबकी आंखें बंद हो गई, घोर अंधकार हो गया। कृष्ण देखा जैसे आज मैं थोड़ा सा आकाश में शैर करूं, उन्होंने इतना भार दिया जो सदमा, ऐसा लगा क्यों भार हो गया, उठा करके पासी में रख ली। और इतने में उसने देखा जी यशोदा जी के गोद से अब ये नीचे चला गया, झट भवंडर ने कृष्ण को भी उठाया ऊपर। कृष्ण ने उसके गर्दन में हाथ लगा दी। जब पूरा रूप में घूम लिए, कहा जी अब मैया से, अब मैया के पास चलनी चाहिए। तो उसने थोड़ा सा गला ऐसे दबाया। कृष्ण ने कहा जी मैं खेल ही में तुम्हारा गला पकड़ लिया, जब तुम्हारे आंखें रसगुल्ले जैसे निकल जाती है और प्राण का वियोग भी हो जाता, तो मैं क्या करूं? मैंने तो कोई रूप बड़ा नहीं दिखलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, और तुम इसी प्रकार से यदि मर जाते हो तो मैं क्या करूं? वहीं से नीचे गिरा, उसके ऊपर में छाती के ऊपर में वो गिरे। ये क्या चीज है? स्पष्ट रूप में श्रीमद्भागवत में भक्ति ही प्रयोजन बतलाई गई। कैवल्यैक प्रयोजनम। कैवल्य क्या? हमने कल परसों बतलाया था, परसों तीन चार दिन पहले मथुरा में समस्त टॉप के जितने विद्वान हैं उन लोगों को बुलाया था, भागवत के बड़े बड़े वक्ता, और मैंने विषय रखा था कैवल्यैक प्रयोजनम। सब लोगों ने भक्ति को ही कैवल्य बतलाया, और है ही यथार्थ में कैवल्य भक्ति, कैवल्य प्रेम। ऐसा कोई भी स्थल पर श्रीमद् भागवत में नहीं आया है जो शुद्धा भक्ति की प्रशंसा नहीं की गई हो, और जो कैवल्य मुक्ति जिसको कहते हैं, भगवान के अंदर में मिल जाना, जिसको साहित्य कहते हैं, इसको धिक्कार नहीं दिया गया। यहां तक कि कृष्ण स्वयं कहते हैं धीमानम न गृहणंती बिना मत्सेवनम जना। और भी बतलाए, एक और श्लोक में है, नहीं ये तो बतलाया, और एक जो उस दिन बतलाया था, बतलाता है जैसे ये सब मुक्तियां देने पर भी न बांछंती, क्या वो बांछंती नहीं, तो वो देने पर भी कैवल्य मुक्ति भी यदि दूं उनको ऐसे करते नहीं, नहीं प्रभु हमको इसकी जरूरत नहीं। श्रेष्ठ भक्ति मुदिश्य थे विभो क्लिश अंत जे केवल बुद्ध लब्ध तेषाम क्लेश। अरे गीता में तरस पर क्लेश अधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। कितनी सब ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितान भवदीय वार्ताम। कितनी भाई सब बतलाई भक्ति की महिमा और मुक्ति का उत्कर्ष। निष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजन। अरे निरंजन जो ज्ञान है, विशुद्ध जो ज्ञान है, उसकी ही नहीं शोभा होती है, तो उस ज्ञान से मिलने वाली मुक्ति की क्या प्रशंसा रहेगी? निष्कर्म ये जो काम है, सब समय अभद्र हैं, इनकी कैसे शोभा होगी? इतना पढ़ लिख करके भी, रोज पाठ करके भी, त्रिपुंड धारण करके, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि करते हैं। अरे तत्त्वमसि का अर्थ यदि करते थे तस्य त्वम असि, तभी एक बात होती। इसलिए श्रीमद्भागवत शंकराचार्य ने इसीलिए इस पर कोई टीका नहीं लिखी, हाथ नहीं दिया डर के मारे जब प्रभु हमको चौपट कर देंगे, इसलिए इस पर नहीं लिखी, और सब इधर उधर में लिखा, गीता पर भी लिख दिया, किंतु भागवत भगवान का स्वरूप है ना, इसलिए इस पर नहीं लिखा। इसलिए जो लोग ऐसा समझते हैं, पढ़ते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, और बाउंडर के रूप में सबके आंखों में धूल झोंक करके ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम करते हैं, कहते हैं कि भागवत में तो ही लिखा है, कहाँ लिखा है? अरे गोपियां जब कृष्ण के अंतर्ध्यान पर होकर होने पर कृष्ण को खोज रही, खोजते 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 होकर करके लीलावश तब वो क्या कर रही हैं, मैं ही वही हूं, कृष्ण बन गई। कृष्ण कैसे बन गई? कोई कहती है अपने कपड़े को उठा दिया, देखो मैं कैसे गोवर्धन धारण कर रही हूं, मेरी ललित गति कैसी है, किसे कह रही हूं, अद्वैत ब्रह्म किसे कहेगा? यदि सभी कुछ ब्रह्म ही हो गया तो कहने वाला सुनने वाला कौन? ये कौन किसे एक गोपी दूसरे से कह रही है? अरे इसको समझना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि के ग्रंथों को नहीं पढ़ने से तनिक भी ज्ञान में नहीं अर्थ लगा सकता भागवत का, कभी संभव पर नहीं है। सब चीज के पारिभाषिक शब्दों का पारिभाषिक अर्थ किया है। यहां पर लीला एक अनुभव है, अत्यंत तन्मयता में कभी कभी ऐसा हो जाता है। किंतु देखो वो एक सखी से कह रही है, सखी देखो तो मेरी कैसी ललित गति है, गोवर्धन धाम को दो। एक को उसने देखा पूतना और अपने उसका छाती पर चढ़ गई उसका दूध पान। अरे यदि अद्वैती ब्रह्म रहता तो वो किसकी छाती पर कौन चढ़ता, और दूध ये तीसरा चीज कहां से आता, ये तीन चीजें कैसे होगी, उसमें तो त्रिपुटी का विनाश होता, इसमें त्रिपुटी का विनाश हुआ कहां, इसमें तो साध्य साधन साधक रहा, आराधना आराध्य और आराधक भी रहा। जो गोपी देख रही है तन्मय होकर के लीला में अनुभव उसके लिए हो रही है, वो तो कृष्ण जैसे उसकी भावना हुई। कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, आवेश खत्म हुआ तो वो हो जाएगा। अच्छा, उस समय में जो पुतना बनी हुई है, एक गोपी को पुतना का आवेश हुआ इसलिए पुतना बन गई, जो इसको पकड़ लिया। विश्वनाथ ठाकुर जी ने यह शंका उठाई, आरा समझ में जो बोल रहा हूं, जो कृष्ण होकर के तन्मय हुआ तो कृष्ण का लीला चिंतन करने से कृष्ण में तन्मयता और आवेश हो सकता है, यह बात तो ठीक है। तो पुतना में उनका आवेश कैसे हुआ, जो एक दूसरी पुतना बन गई, कैसे बन गई पुतना, पुतना में तो आवेश उनका नहीं है, तो एक दूसरी पुतना गई और उसको जिसको तन्मयता थी कृष्ण को उसको उसने पकड़ लिया, उसकी छाती पर चढ़ गई और उसका स्तनपान करने का अभिनय करने लगी। उन्होंने कहा जैसे किसी की भी आसुरक वृत्ति में तन्मयता नहीं होगी, गोपियां तो एकदम प्रेम की ध्वजा हैं, इसलिए ऐसा हुआ। उनकी इस चीज को लीला की पुष्टि के लिए जोग माया ने एक माया की मूर्ति पुतना जैसी बना दी गोपी। उसी तरह से जितने भी विरोधी भाव वाली थी वो कोई भी गोपी नहीं थी, केवल कृष्ण में जो तन्मयता वाली थी वही गोपी का लीला का अनुभव है। अनुभव कैसे, जैसे शुद्ध सत्व में जब भगवत दर्शन और लीला का आनंद होता है, जैसे कृष्ण को यशोदा जी दूध पान करा रही है, कृष्ण उसे दूध पी रहे हैं, यशोदा जी कृष्ण को देखकर के वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, सिर पर हाथ फेरने लगी, एक हाथ से उसके बालों को सुलझाने लगी, आंख से आंसुओं की धारा प्रेम की बहने लगी, रोमांच पुलक इत्यादि हो गया। तब यह आई वात्सल्य रस, एक वात्सल्य रति होती है और रति में उसके द्रव्य जब मिलते हैं, क्या द्रव्य है वो, विवाह अनुभव सात्विक व्यभिचारी इत्यादि, जैसे चीनी, चीनी में पानी प्रपोर्शन रूप में और उसमें केवड़ा का थोड़ा सा पानी डाल दो या और कोई चीज मिला दो, गुलाब जल डाल दो, बहुत सुंदर रसाला हो जाता है। ऐसे जो रति है भाव, उसमें ये सब चीजें अनुभव सात्विक इत्यादि होने पर रस होता है, तब यह यशोदा जी का ये वात्सल्य रस है। ऐसे ही सब रसों को समझना चाहिए। तो जब ये पुलक रोमांच अश्रु पुलक कब होते हैं, अश्रु सात्विक भाव या व्यभिचारी भाव कब होते हैं, शुद्ध सत्व में जीव का जब शुद्ध हृदय में शुद्ध सत्व प्रकटित होता है, उस समय आत्मा में जो भाव होते हैं वो अनुमाने पीछे पीछे, पहले आत्मा में हुआ इसके बाद में शरीर में हुआ, इसलिए अनुभव कहते हैं, पीछे से जो भाव होते हैं। उसी तरह से उसको लीला में उस अनुभव को समझना चाहिए, ये तन्मयता के कारण में वो आत्मा में तन्मयता हुई, इधर शरीर में वैसा भाव आया। इसलिए श्रीमद्भागवत में कहीं भी मुक्ति का स्थान नहीं है। इसलिए धर्मोपचित प्रोज्जित कवितों में श्रीधर स्वामी जी ने और हमारे समस्त आचार्यों ने माना, मुक्ति का लेश भी नहीं होगा। इसी को कहते हैं कपटता। कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का भागवत पाठ करते हैं, और यदि नजर और भावना है रुपये पर जो कितनी प्रणामी मिलेगी भागवत से, तो ये क्या हुआ, ये कपटता हो गया। अरे पेट भरने के लिए लाखों धंधे हैं, लाखों एक नहीं करोड़ों धंधे हैं। जैव धर्म में ये सब का वर्णन आया है, भागवत में भी लिखा है। भागवत का सार कैसे चला गया, लोभी लोगों के द्वारा ये भागवत को बांचने से। इसलिए ये सब कपटता है, आंख में धूल डालने के लिए ये तृणावर्त कृष्ण उसका वध करते हैं। दामोदर लीला तक वृंदावन में गोकुल में लीला हुई। दामोदर लीला का तात्पर्य श्रीमान शुभानंद ने बतलाया होगा। दो चीज है, दो अंगुल कम पड़ रही है रस्सी। दो अंगुल का क्या तात्पर्य? कृष्ण चाह रहे हैं कि मैं ब्रज में जाऊं, गाय मेरे लिए दूध नहीं दे रहे बछड़ों को, सखा हमारे मेरे लिए खेल नहीं पा रहे, मैया यदि बांध दिया तो मैं बाहर नहीं जा सकता, मैया नहीं बांधती तो अच्छा। साथ ही साथ उनकी इच्छा शक्ति जो जोग माया है, ऐसी लीला की रस्सी बढ़ने लगी और कृष्ण की कमर बारह अंगुल की जैसे की तैसी रही। यशोदा जी का पहनाया हुआ करधनी पहनाई हुई करधनी वो लगी हुई है, वो न बढ़ घट नहीं रही। रस्सी बढ़ती 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 साल गोकुल की रस्सियां जोड़ दी गई, किंतु दो अंगुल कम पड़ती है। प्रति बार दो ही बात, तीन अंगुल, चार अंगुल, दो अंगुल, एक अंगुल नहीं पड़ता। इसमें पहली को बतलाया भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक है। भगवान की कृपा तो सर्वत्र ही है, सर्वत्र भगवान की कृपा है। एक अंगुल या दूसरी अंगुल हुई अपनी चेष्टा, साधन रूपी चेष्टा, सारी चेष्टाएं लगा देंगे भजन में। यदि हमने भगवान के लिए भजन नहीं किया, वैसा अम्बरीश महाराज को देखो जे कैसे निर्जला उपवास इत्यादि करते हैं, हमारे रूप सनातन इत्यादि को देखो, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार काद विजितौ चातंत दीनौ चजौ राधा कृष्णम गुणस्मृते मधुरिमांदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। गोपियों ने अपना सर्वस्व कृष्ण के लिए त्याग किया, पति पुत्र आत्मीय स्वजन, यहां तक कि गुरुजनों के प्रति भाव जो है, लज्जा है, लोक है, सबको छोड़ देंगी महिलाएं, किंतु लज्जा नहीं छोड़ती, इस लज्जा को भी प्रत्याग कर दिया कृष्ण से, तब तो कृष्ण मिलते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयाशीत सबंधन, यशोदा जी का एक ये देखा, जैसे सवेरे से बांधते बांधती प्रतिज्ञा कर रखी है शाम हो जाएगी, एक दिन दो दिन दस दिन एक वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष लाख वर्ष जन्म भर बांधती रहूं, बांध करके छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ये उनकी प्रतिज्ञा। और दूसरी तरफ में वो कृष्ण की कृपा है, जब उन्होंने देखा जितने फूल थे उनकी जुड़ाव में वो सब गिर गए, श्वेत बिंदुओं से उनका मुख भर गया, टपकने लगा, यशोदा जी का मुख विवर्ण हो गया, लाल हो गया। गोपियां करियां ताली बजा करके, देखो इसके ललाट में ब्रह्मा जी ने बंधन नहीं लिखा, तू क्या बांधेगी, और मैं तो बांध करके रहूंगी। अब लज्जा भी आ रही है, तरह तरह के भाव बदल रहे हैं, चेहरा ये दर्पण है हृदय का, चेहरे से मालूम पड़ जाएगा हृदय में कैसी भावना। यशोदा जी ने देखा मैं इस छोटे को बच्चे को जो हमारे गर्भ से निकला इसको बांध नहीं पा रही, नारायण अब क्या होगा, मैं अपने को तुम्हारे चरण में समर्पित किया। नारायण कौन है, नारायण के भी मूलांशी कौन है, वही तो उनका बच्चा बना हुआ है। इसलिए कृष्ण ने उनके परिश्रम को देखा, उनके भावना को देखा और साथ साथ में कृपा से द्रवित हो गए। अब रस्सी दूसरी लानी नहीं पड़ी अपने सिर के बांधने, अपने केश को बांधने के लिए, जो रेशम की डोरी थी बस उसी से ही वो दो अंगुल पूरा हो गया। रामानुज संप्रदाय में दो संप्रदाय है, एक बड़गलई और एक तेलंगलई, एक मरकट न्याय एक मारजार न्याय। मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर देखा है ना, चश्मा लगा करके तरह जाओ देख लेगा, चप्पल पहन करके जाओ वो ले लेगा, कोई भी चीज लेकर के जाओ वो जरूर लेगा। उसके बच्चे होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह उसको कूदना होता है, छलांग मारना होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरी डाल पर, एक मकान से दूसरी डाली पर, तो क्यों ऐसे खड़ा होकर के ऐसे देखता है, और उसका बच्चा जहां से रहेगा टपक करके आएगा और उसको या तो ऊपर में या इचर कहीं ना कहीं वो अपने पैरों से और हाथों से पकड़ लेता है और कूद जाता है। बंदर कुछ बंदर ये नहीं देखती है ये गिरा की बचा के क्या सा, वो तो छलांग लगाएगी। यदि छूट गया बच्चे का, उसका शरीर छूट गया, यदि उसने छोड़ दिया तो वो गिर गया, उस बच्चे को अब जीवन भर नहीं छुएगी, चाहे बिल्ली लेता हुआ मर जाएगा किंतु अपने पास नहीं आने देगी, वो ऐसा ही उनका नियम है। और वो भी ऐसा एकदम चिपक जाता है, वो गिर नहीं सकता। इसमें बंदरी का कोई बंदरी की कोई भी चेष्टा नहीं होती। दूसरी तरफ मारजार न्याय, मारजार में कहते हैं बिल्ली, बिल्ली का बच्चा जन्म लेकर के म्याऊ 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 करता रहेगा, हटेगा नहीं, इधर से नहीं जाएगा, मैया दूर से सुनेगी तो आ जाएगी, दूध पिला देगी, या ले जाना होगा तो बच्चा कोई भी चेष्टा नहीं करेगा, बिल्ली उसके पकड़ लेगी उस बच्चे को, दांत न गड़ जाए, और पकड़ करके और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, वो म्याऊ म्याऊ करता हुआ जाएगा। भक्त लोग कहते हैं, रामानुज के दो श्रेणी के भक्त लोग कहते कि मर जार न्याय ठीक है, हम कोई भी चेष्टा नहीं करेंगे, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर में हो जाएगी, भगवान तो है तो कृपाशाली है, इसलिए कोई चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं, साधन भजन की जरूरत नहीं है, वो कैसे भगवान कृपा कर देंगे, हो जाएगा। दूसरा संप्रदाय कहते हैं ये नहीं, हम लोग चेष्टा करेंगे, बिना चेष्टा के भगवान नहीं मिल सकते। इसका उदाहरण उन्होंने बंदरों का दिया। महाप्रभु जी से यह प्रश्न जबकि दक्षिण में गए तो उन लोगों ने पूछे इसकी क्या मीमांसा है, महाप्रभु जी ने कहा यही यशोदा जी का ये दामोदर लीला का देकर, भाई भगवान की कृपा सर्वत्र है, एक आदमी कुआं में गिर गया, ऊपर से कुछ लोगों ने रस्सी गिराई, यदि वो रस्सी नहीं पकड़ता है कहता है भाई रस्सी पकड़ लो मैं ऊपर उठा लूंगा बच जाएगा, किंतु वो रस्सी भी नहीं पकड़ता, ऐसे भगवान की कृपा रूपी रज्जू है, पकड़ना हमारा कर्तव्य है, इसलिए जब तक ऐसा नहीं करेंगे भगवान कृपा भी नहीं करते, इसकी कोई चेष्टा ही नहीं है, जो चेष्टा करेगा उसके ऊपर में भगवान की कृपा भी, तो है तो की कृपा रही क्या, अरे पकड़ना तो एक है ना, पकड़ेगा आदमी तब तो खींचेंगे, यह उनके इसके संबंध में हमने बहुत कुछ बतलाया है। इसी तरह से वहां पर गोकुल की लीला समाप्त होती है, वृंदावन में आए, कितना बजा, 7 बज गया है, अच्छा 5 मिनट, तो यहां पर आए, उन्होंने वहां पर और सब लीलाओं का वर्णन किया। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, कृष्ण बलदेव सखाओं को लेकर के मधुबन के किरप में गोचारण कर रहे थे। बच्चों ने कहा कि आज तो बहुत बड़े भारी राक्षस ने हमें पकड़ लिया, हमारी किसी प्रकार से रक्षा कर। वो राक्षस क्या है, भूख, बड़ी भूख लग रही है, इधर केवल अशोक के पेड़ हैं, खाने के लिए कुछ फल फूल वाला नहीं, और भूख भी लग रही है, और एक सोनी सोनी सी सुगंध आ रही है, किस चीज के, पके हुए ताल फलों की, बहुत ही सुंदर सुगंध होती है, मीठी सी, बच्चे मचल जाते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोगों के यहाँ पर ताल के कुछ पेड़ थे, देखने में भी सुंदर, बहुत सुंदर फल लगता है, और मीठा भी बेहद होता है, उसकी सुगंध चारों ओर में उठती है। बच्चों ने कहा आज हमें ताल फल खाने की इच्छा हो रही है, बलदेव प्रभु जी आज हमको ताल फल की गंध आ रही है, ले चले। जी कहाँ है ये, अरे पासी में ताल बल है कंस का, बहुत से ताल वृक्षों को लगवा रखा है, और वहां पर अपना एक अनुचर है, उसका नाम है धेनुकासु, उसकी रक्षा के लिए लगा रखा है, उसकी पत्नी वो उसके बच्चे टच्चे बहुत हैं, कोई जंगल में जाता है उसी बेश में आकर के उसे मार डालते हैं, एक फल भी नहीं लेते, और कंस के पास में उसको भेजवाते हैं, कंस अपने अनुचरों के साथ में उसका रसा स्वादन, कोई भी ब्रजवासी इसको नहीं पा सकते। अच्छा चलो, बलदेव जी को पहले बतलाया ना ये गुरु तत्व हैं, कृष्ण का कुछ अपना कार्य है, कुछ गुरु का काम होता है, जब तक गुरु न रहे भव निधि तरे न कोई, यो बिरंच शंकर सम होई। श्रीमद् भागवत में वैसे ही बतलाया, तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही वर्णन किया। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें कि गुरु की महिमा नहीं है, किंतु गुरु भी गुरु होना चाहिए, शिष्य भी शिष्य होना चाहिए। आधुनिक काल जैसा शिष्य और गुरु नहीं, वो दोनों, वो तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा, अंधे यथा अंधा उपनियमान ते अपीश तंत्रा गुरुदाम निबद्धा इत्यादि कहा है। इसलिए ऐसा नहीं, शुद्ध ऐकांति कृष्ण का भजन परायण गुरु हो, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य का अनुभव धावन करने वाला हो, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की अनुभूति वाला हो। शब्द ब्रह्म माने वेद उपनिषद शास्त्र श्रीमद् भागवत, और पर ब्रह्म माने कृष्ण की अनुभूति हो और विषयों से अनासक्त हो, ये सब गुरु के लक्षण हैं। यदि समस्त शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी गुरु में एकांतिक कृष्ण की भक्ति नहीं है, विशेष करके कलयुग में कीर्तन प्रधान न हो, तो गुरु शब्दवाच्य नहीं हो सकता है जब तक अनुभूति न हो। और यदि शास्त्रों का ज्ञान वो देने में असमर्थ भी हो, एकांत की भक्ति हो, ज्ञान तो सब उसमें रहेगा जरूर, किंतु हो सकता है कि वो बोल न सके, किंतु जरूर रहता है। इसलिए भगवान की अनुभूति जो है यही सब ऊपरी है, और जहां ये होगी साथ साथ में ज्ञान वैराग्य इत्यादि सभी उसके साथ में होंगे। प्रहलाद ये बलदेव प्रभु जी कृष्ण ही स्वरूप हैं और गुरु तत्व हैं, अखंड गुरु तत्व हैं। वहीं से परंपरा आरंभ होनी चाहिए, उस परंपरा में जो आएगा वो समझो जो बलदेव जी की ही कृपा है। भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधक है अज्ञानता, इसी को हम लोगों के शास्त्रों में भक्त स्वामी सुंदर इत्यादि में अनर्थ बतलाए गए हैं। चार प्रकार के अनर्थ बतलाए गए, कौन कौन? स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध इत्यादि, और एक एक को चार चार भाग में बांटा। गुरु शिष्य को यह सब चीजों का उपदेश देता है और अज्ञानता को दूर करता है। सबसे बड़ी अज्ञानता है कृष्ण को भूलना, यूं ही कृष्ण से भूलेंगे। भयं द्वितीयाद अविनिवेशतस्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माया तो बुध आभजेत तं भक्तैः केजेषां गुरुदेवतात्मना। इसमें गुरुदेव की महिमा इसमें भी है, भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी के बाद में संसार की वासना होती है, वासना से फिर कर्म इत्यादि के रूप में आकर के भगवान को एकदम सबता भूल जाता है, मायाग्रस्त हो जाता है। गुरुदेव का कार्य है इस अज्ञानता को दूर करना। तीक्ष्ण धार वाली तरवार के समान ज्ञान से शिष्यों के इस अज्ञान को गुरुदेव काटते हैं, उसकी वासनाओं को दूर कर देते हैं सदा के लिए, और कृष्ण के चरणों की सेवा में उसे लगा देते हैं। धैन का सुर है गधा, पशुओं में भी सिंह रहित एकदम गधा। गधा माने मूर्खों को गधा कहते हैं। जो लोग समस्त शास्त्रों में विद्वान हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वेदांत इत्यादि सब उनको मुखस्थ है, उपनिषद भी उनको मुखस्थ है, सब कुछ है, दूसरों को उपदेश देते हैं इस सब विषय का, किंतु कृष्ण का भजन नहीं करते, तो वो गधे की कोटि में है। इसलिए बलदेव प्रभु जी धेनुकासुर, धेनुकासुर माने गधा, उसका वध करके माने उसको दूर करके शिष्य को भगवान के चरणों में ले जाते हैं। गधा संसार का सब माल ढोता है, रसास्वादन नहीं कर पाता। हमने देखा है पहाड़ों पर वो लेकर के जाता है गुड़, चीनी, शक्कर, घी, बुरा मैदा, अच्छे अच्छे कपड़े, सब सामान गधों पर लद करके जाता है, किंतु गधा को से उतार लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जाओ चलो, कुछ खिलाते भी नहीं। धोबी जितना गंदा माल है, आवर्जना जितना, छोड़े हुए मैले कपड़े इत्यादि सबको वो लेकर के जाता है घाट पर, और साफ करके ले आने के बाद में उसको पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता। यह है गधापन। शास्त्र समस्त पढ़ करके भी और भगवान की एकांत की भक्ति नहीं हुई, विशेष करके श्रीमद् भागवत में क्या प्रयोजन है, कैवल्य के प्रयोजनम या सबई पुंसांग परो धर्मो, परो धर्म किसको बतलाया, परो धर्म गोपियों के सर्वोत्तम भाव को परम धर्म बदला, इससे परम धर्म और नहीं हो सकता। कृष्ण कठपुतली की भांति में जिनके हाथों में नाचते हैं, आशाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लता औषधि नाम, जह दुस्तजन स्वजन आर्य पथम चहित्वा भेजे मुकुंद पदवेम श्रुति भी ब्रह्मज्ञान। श्रुतियों के लिए अन्वेषणीय है किंतु गोपियों के मुट्ठी में है। कते न पारे हम नरबद्ध संयुजंग, गोपियों के इस निर्मल प्रेम के इतने कायल हो जाते हैं वो चिर दिन के लिए ऋणी बन जाते हैं और इसी में अपना सौभाग्य समझते हैं कि मैं गोपियों का ऋणी हूं। प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, गोपियों से प्रेम की शिक्षा लेते हैं। कहां से आ रही है वृंदा, कस्मात वृंदे प्रिय सखी हरि पादमलत, हरि के चरणों कमल से मैं आ रही हूं। कहां है वो वृंदारण्य, कहां राधा कुंड पर है। किम कुरते, क्या कर रहे हैं? अरे वो नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं, नृत्य नाचना कैसे होता वो शिक्षा ले रहे हैं। अरे कौन सिखला रहा है, गुरु का कौन गुरु है? तो वो सखी करे राधा जी के लिए, आपकी ये मूर्ति है पेड़ों में पौधों में लताओं में उनके पत्तों में जो कांप रही है, यही आपकी मूर्ति सर्वत्र कृष्ण दर्शन करते हैं और उसी से नित्य शिक्षा कर रहे हैं। चैतन्य चैतामृत में तो स्पष्ट रूप से कहा गया क्या, प्रेमेर गुरु, प्रेम के गुरु हैं राधिका, और शिक्षा गुरु कौन है? विशाखा जी और ललिता जी, कौन सर्व दामोदर राय रमन, दीक्षा देने वाली कौन है? राधिका जी स्वयं, और शिक्षा देने वाली उसकी, व्याख्या करने वाली, उनको प्रवेश कराने वाली प्रेम की। अरे कृष्ण तो विषय प्रेम के आदि हैं, हमको विषय प्रेम की जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है? आश्रय प्रेम, कैसे कृष्ण की सेवा की जाती है। ये बेचारे कृष्ण क्या जानेंगे जब अपनी सेवा कैसी होती है, इसको जानती है सबसे अधिक राधा। इससे श्रीमती राधिका जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, यही कैवल्यक प्रयोजनम और श्रीमद्भागवत का यही प्रतिपाद्य है। जो ऐसा नहीं जानते और ऐसा समझ करके राधिका भजन नहीं करते, कृष्ण का ही केवल भजन करते हैं, तो आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं जानी। जैसे सूरज बिना आतप के गर्मी के नहीं रह सकता, प्रकाश के माधव नहीं रह सकते। यदि गोपियां नहीं है, राधा जी नहीं है, तो वो निर्विशेष अव्यक्त अनादि ये ब्रह्म हो जाएंगे। राधा जी हैं इसलिए तब वो मदन मोहन है, और राधा जी नहीं रहे तो
मदन मोहित,
केवल मदन मोहित। और राधा जी कैसी हैं? मदन मोहन मोहिनी है। इसलिए श्रीमद् भागवत, अरे कृष्ण के भजन की तो बात तो समस्त शास्त्रों में लिखी गई, भागवत का यह प्रतिपाद्य नहीं है। भागवत का प्रतिपाद्य यह है, सब शास्त्रों में ये कहते हैं कृष्ण का भजन करो, और इसमें बतलाया गया है प्रारंभ से कृष्ण भजन करते हैं अपने भक्तों की। यशोदा मैया के डर के मारे रोते हैं, सचमुच में रोते हैं, सखा उनके कंधों पर चढ़ करके दौड़ते हैं, दुल दुल करके घोड़े से जैसे उनको हांकते हैं, और गोपियां छाछ के थोड़ा सा छाछ लेकर उस पर नचाती हैं, इशारे पर नचाती हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत का प्रतिपादन, इसलिए परम धर्म वही है। इसलिए हम जो बतला रहे थे धेनुकासुर, शास्त्रों का सब कुल पढ़ करके भी और इस रस में नहीं डूबे, निगम कल्प तरुर गलितंग फलम सुखम काद अमृत द्रव। वो द्रव रसामृत क्या है जिसको भावुक और रसी भक्त लोग ग्रहण करते हैं, वो क्या चीज है? वही चीज है श्रीमती राधिका और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो चरित्र है। पांच प्राण हैं ये, पांच अध्याय है? इसके बाद में जुगल गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, ये सब अद्भुत अद्भुत। इनको निकाल दिया जाए भागवत से तो भागवत रहेगा क्या? रस नहीं रह सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत का ये प्रतिपाद्य है। इसलिए धेनुकासुर का वध करके वो जो मधु था उसका रस था, रस सखाओं के लिए और ब्रजवासी सब लोग भक्तों के लिए सुलभ कर दिया। ये बलदेव जी की महान कृपा है। इसी तरह से कालिय पर उन्होंने कृपा की। समय अधिक हो गया, आज मैं यहीं कह करके मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कल काली पर कृपा, काली पर कृपा नहीं, काली माने नाग पत्नियों पर कृपा की, उनके वजह से काली बच गया, नहीं तो काली को बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके संबंध में जो विशेष बातें हैं हम लोग कल करेंगे। इस तरह से वेणुगीत होगा और सब चलेंगे। 30 तारीख को लीला समाप्त, ये सब भागवत समाप्त होगी और 31 तारीख को हम लोग समापन इसका कर करके यज्ञ इत्यादि करके और इसको वैष्णव संत सबको थोड़ा प्रसाद दे करके और तब समाप्ति करेंगे। इसके बाद में बहुत जल्दी चलना है, 31 तारीख को ही मथुरा में पहुंचना है, वहां पर राधा जी का जन्मोत्सव हो बड़े अच्छी तरह से मनाया जाए जैसे प्रतिवर्ष होता है और उत्साह के साथ में। मथुरावासी जब लोग हों अपने सहेलियों को कहें और अपने को भी ये ठीक कर लें, जैसे चाव आता था वो चाव एक एक घर से सब लोग ले आ करके एक स्थान निर्दिष्ट रहेगा गुप्ता जी के घर पर और वहीं से चाव निकलेगा। राधा जी के लिए सुंदर सुंदर चूड़ियाँ सुहाग कपड़े वस्त्र, उनके श्याम सुंदर के लिए भी ये सब चीज़ें आएंगी और 56 तरह के सब अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें बनेंगी पदार्थ, और उनको लेकर के गोपियाँ कीर्तन करती हुई वहाँ पर आएंगी। राधा जी का अभिषेक होगा बड़े सुंदर रूप से। उनके तत्व के संबंध में हम लोग कुछ वर्णन करेंगे, स्तव स्तुतियाँ जो श्रीमद्भागवत इत्यादि में हैं। मुनिन्द्र बिंद बंदिते तिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी शशी हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। अंतिम मखेश्वरी सुरेश्वरी सुदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी।